श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरम्भ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यहेजकेल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि गोग और मागोग, जिसे इसराइल का शत्रु दर्शाया गया है, और इतना ही नहीं, इसे रूस माना गया है। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने वचन की सत्यता को हम पर प्रकट करता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि प्रत्येक जब आपके वचन को सुने तो आपकी सत्यता को समझ सके और उसे अपने जीवन में ग्रहण करने पाए, और इतना ही नहीं, उसके अनुसार चल सके। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप हमारे श्रोता भाई बहनों की रक्षा करें, ताकि वे आप में आनंदित और सुरक्षित रहने पाए। आज के वचन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि रूस नास्तिकवाद हो गया था, और हमने यह भी देखा कि दाऊद के युग में नास्तिकवाद उभर रहा था। भजन संहिता 14 उसके 1 पद में भी हम देखते हैं, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर नहीं है। रूस के विषय में महानुभवों ने कहा है, आप उनसे सौदा नहीं कर सकते। इंग्लैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि रूस जटिलता के भीतर रहस्य में लिपटी पहेली है। वर्षों पूर्व रूब गोल्डबर्ग ने व्यंग चित्र में स्टालिन को दर्शाया एक महान उल्टा दार्शनिक। उस व्यंग चित्र के नीचे लिखा था, ऊपर नीचे है, काला सफेद है, दूर पास है, दिन रात है, बड़ा छोटा है, ऊंचा नीचा है, ठंड गर्म है, और हां नहीं है, तर्कहीन पागलपन, परंतु यह रूस का मुख्य विचार है। हमारे युग में यही एक राष्ट्र उभरा है। स्टालिन ने एक बार कहा था, हमने पृथ्वी के राजाओं को तो हटा दिया है, अब हम स्वर्ग के प्रभु की सिंहासन को भी ले लेंगे, अर्थात प्रभु को भी सिंहासन से उतार देंगे। जब रूस का उपग्रह स्पुतनिक चांद के पार सूर्य के निकट जा रहा था, तब रूस के रेडियो पर कहा गया था, हमारे उपग्रह ने चांद को पार कर लिया है, वह सूर्य के निकट जा रहा है। हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, हमने स्वर्ग की बत्तियां बुझा दी हैं कि अब कोई मनुष्य उन्हें जला ना पाएगा। हमने नशे की दवा सुसमाचार का जुआ तोड़ दिया है। आइए हम आगे बढ़ते रहें और मसीह यीशु एक हीन दंत कथा रह जाए। मेरे मित्रों, मैं हमेशा सोचता हूं कि यह कहते समय उनके मन में क्या विचार उठ रहे होंगे। क्या वे सोच रहे थे कि प्रभु यीशु चांद के पार छिपा छिपी खेल रहा था? उन्होंने चांद का पश्च भाग देखा और परमेश्वर को नहीं देखा, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर नहीं है? यह एक उल्टे दार्शनिक का विचार है। इससे पूर्व कि रूस का उदय हो, परमेश्वर ने कह दिया था कि वह उसके विरुद्ध है। अतः आप देख सकते हैं कि इन तीन परिघटनाओं के आधार पर गोग मागोग रूस देश ही है। पहला भाषा विज्ञान, दूसरा भूगोल और तीसरा दार्शनिक विचार। मेरे प्रियो, अध्याय 39 में परमेश्वर फिर कहेगा कि वह रूस के विरुद्ध है। इस अध्याय में लिखा है कि यह राष्ट्र अपने अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ इसराइल के विरुद्ध आएगा। रूस इसराइल पर आक्रमण क्यों करेगा? यह एक प्रश्न है। वे इसराइल पर आक्रमण क्यों करेंगे? आइए हम पढ़ें यहेजकेल 38 अध्याय उसका 4 पद। लिखा हुआ है, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ हैं, जो फरी और ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे। इस पद का अनुवाद प्रायः किया जाता है कि परमेश्वर बैरी के जबड़ों में आंकड़े डालकर उसे इसराइल से बाहर निकालेगा, परंतु इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है। वह स्पष्ट करता है कि वह उन्हें इसराइल देश में ही दंड देगा और वे जीवित बाहर नहीं निकलेंगे। अध्याय 39 उसके 11 पद में वह कहता है, उस समय मैं गोग को इसराइल के देश में कब्रिस्तान दूंगा। इस अंश को पढ़कर स्पष्ट होता है कि परमेश्वर आक्रमण करने वाले राष्ट्रों को बाहर निकलने नहीं देगा। वहां ऐसा नरसंहार होगा जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मेरे विचार में यह है कि परमेश्वर उनके जबड़ों में आंकड़े डालकर उन्हें इसराइल के देश में लाएगा। इस समय संपूर्ण इसराइल अपने देश में होगा। इस देश को अपनी प्रजा से रहित हुए वर्षों बीत गए हैं। सन 70 में रोमी तीतुस द्वारा इसराइल को ध्वंस करने के बाद यहूदी संपूर्ण विश्व में दास होने के लिए बेच दिए गए थे और आज भी वे तीतर बीतर होकर के रहते हैं। मेरे मित्रों, वह देश अब दूध और शहद का देश नहीं रहा। यहेजकेल की पुस्तक से ज्ञात होता है कि नेगेब भी कभी घना जंगल था। परमेश्वर ने कहा था कि वह उसे जला डालेगा और ऐसा ही हुआ। एलियाह इजेबेल से डरकर वहीं भाग गया था। वह थक कर झाऊ पेड़ के नीचे सो गया था। यदि एलियाह आज हो तो वह उस पेड़ को खोज नहीं पाएगा। पूरा जंगल समाप्त हो गया है। मार्क ट्वेन ने इसराइल के लिए कहा था, पलिस्तीन टाट ओढ़कर राख में बैठा है, सुनसान और अप्रिय है। वह एक निराशा का, उदासी का, दिल तोड़ने वाला स्थान है। और उसे वह क्यों ना हो? क्या परमेश्वर का शाप किसी देश को सुंदर बनाएगा? पलिस्तीन आज के कर्मशील संसार का भाग नहीं है। वह कविता और प्रथाओं में ही पवित्र है। वह स्वप्नों का देश है। मेरे प्रियो, ऑस्ट्रिया के एक नाटककार थियोजोर हर्जल, जिसने स्वदेश लौटने का यहूदी अभियान चलाया, उसने कहा, एक देश निर्जन है, एक जाति देश रहित है, वह निर्जन देश देश रहित जाति को दे दो। डॉक्टर चाइम विजमैन, इसराइल के प्रथम राष्ट्रपति, ने एग्लो अमेरिकन इंक्वायरी के समक्ष कहा था, यहूदी राष्ट्र एक बेताल राष्ट्र है, केवल इसराइल के परमेश्वर ने यहूदियों को जीवित रखा है। डेविड गुरियोन, इसराइल के प्रथम प्रधानमंत्री और सुरक्षा मंत्री, ने कहा था, यहेजकेल 37 अध्याय की पूर्ति हो गई है और इसराइल राष्ट्र मसीह की पदचाप सुन रहा है। मेरे मित्रों, आज इसराइल का विचार अलग है। मेरे पास इसराइल के 21वीं स्थापना दिवस का एक चित्र था। यह तेल अवीब में हुई सभा का नारा है, विज्ञान इस देश में शांति लाएगा। पुराने नियम में लिखा है कि मसीह उस देश में शांति लाएगा। स्पष्ट है कि वे एक नए मसीहा के पीछे भाग रहे हैं। रूस इसराइल पर आक्रमण करेगा। लॉर्ड बेवरली ने कभी कहा था कि रूस पश्चिमी यूरोप पर नहीं, एशिया वरन मध्य एशिया पर आक्रमण करेगा। जिस समय लॉर्ड बेवरली ने यह घोषणा की थी, उस समय सब यही सोचते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस अब पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण करेगा, परंतु वे उस ओर नहीं बढ़े। सच तो यह है कि उन्होंने आज के दिन तक उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूस इसराइल पर आक्रमण करेगा और परमेश्वर उनकी कब्रें इसराइल देश में ही खोद देगा। ऐसा नरसंहार होगा जैसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। लिखा है वचन में, मैं तुझे घुमा लाऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा। आज हम तीन आंकड़े देख सकते हैं जिन्हें डालकर परमेश्वर उन्हें वहां से लाएगा। आइए हम देखें। पहला, रूस को गर्म जल के प्रवेश द्वार की आवश्यकता है कि संसार के जल मार्गों में प्रवेश करे। यह इसराइल के पास है, इसलिए रूस उस ओर अग्रसर है। मेरे मित्रों, रूसियों को किस बात की आवश्यकता है? वे एक गर्म जल के बंदरगाह की खोज में हैं। उनके सेनानायक ने विश्व युद्ध के बाद घमंड से कहा था कि रूस का झंडा विश्व के सब समुद्रों पर लहरा रहा है। आज नहीं तो कल अमेरिका को समझ में आ जाएगा कि वे समुद्रों के स्वामी नहीं रहे। रूस गर्म पानी के बंदरगाह की खोज में कहां जाएगा? वे भूमध्य सागर की ओर अग्रसर हैं। भूमध्य सागर में पूर्वी दिशा में कौन सा बंदरगाह उनके लिए सुविधाजनक होगा? निश्चय ही इसराइल। रूस को आज दक्षिण की ओर बढ़ने में रुचि है। परमेश्वर ने उसके जबड़े में आंकड़ा डाला है। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का दूसरा आंकड़ा तेल है। मध्य एशिया के तेल के भंडार आधुनिक संसार के लिए अति महत्वपूर्ण है। रूस को तेल की आवश्यकता है। आज एक मुख्य विषय है, विश्व में तेल की घटी होने जा रही है। इसकी प्रतिक्रिया में संसार उन स्थानों को हथियाने में लगा है जहां तेल है। मध्य एशिया में तेल पर्याप्त मात्रा में है। इसराइल में तेल है या नहीं है, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अरब और इसराइल के तनावग्रस्त संबंधों के उपरांत भी तेल का यातायात इसराइल देश से होता है। जहाज सुएज केनाल से नहीं जा पाने के कारण जिस बंदरगाह पर तेल उतारते हैं, वह बंदरगाह इसराइल के अधिकार में है और फिर तेल वहां से थल मार्ग द्वारा भूमध्य सागर के बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है। मेरे प्रियो, 1955 में एक बार एक प्रचारक ने अपने संदेश में कहा कि रूस अरब के तेल का प्यासा है, तो एक समाचार पत्र के संपादक ने उनका खंडन किया, परंतु जब वह स्वयं मध्य एशिया का भ्रमण करके आया तो उसने भी इसी शीर्षक पर अपने समाचार पत्र में लेख लिखा। मेरे प्रियो, मध्य एशिया से लौटने के बाद उसने अपना विचार बदल दिया था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से परिस्थितियों को देखा था। परमेश्वर का यह आंकड़ा रूस के जबड़े में अच्छा फंसा है। हर एक आधुनिक राष्ट्र को तेल की आवश्यकता है। तीसरी बात हम देखते हैं, जो तीसरा आंकड़ा है, मृत सागर। मृत सागर में इतना अधिक खनिज है कि आज का बाजार उसे संभाल नहीं सकता है। उस जल में अवर्जित खजाना है। अनुमान लगाया जाता है कि मृत सागर में पोटाशियम क्लोराइड ही 200 करोड़ टन है, अर्थात पोटाश जो मिट्टी को उर्वरक बनाता है, और आज संसार की मिट्टी में इसकी बहुत कमी है। उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड 2200 करोड़ टन है, 1200 करोड़ टन नमक और 600 करोड़ टन कैल्शियम क्लोराइड है। इसके अतिरिक्त उसमें सेरियम, कोबाल्ट और सोना भी बहुत अधिक मात्रा में है। मृत सागर से इस खजाने को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि आप सृजन कार्य के समय होते तो परमेश्वर से पूछते, आप इस समुद्र को क्यों तैयार कर रहे हैं, यह तो नमक का स्थान हो जाएगा। वह उत्तर देता, मैं आंकड़ा तैयार कर रहा हूं, परंतु किसके लिए? परमेश्वर का उत्तर होता, लाखों वर्ष बाद मैं उत्तर दिशा से एक देश को इसराइल में लाऊंगा, उसी के लिए यह आंकड़ा तैयार कर रहा हूं। परमेश्वर यही कह रहा है, एक आंकड़ा तैयार कर रहा हूं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि रूस इसराइल पर कब आक्रमण करेगा, यह एक प्रश्न है। रूस इसराइल के विरुद्ध कब आएगा, यह एक विवाद का विषय है। कुछ लोगों का कहना है कि इस युग के अंत में रूस इसराइल पर आक्रमण करेगा, कलीसिया के उठाए जाने से पूर्व, परंतु कुछ का कहना है कि रूस महाक्लेश के पूर्व आक्रमण करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि महाक्लेश के अंत समय में वह इसराइल पर आक्रमण करेगा, और कुछ का मानना है कि यह घटना सहस्र वर्षीय प्रभु राज्य के आरंभ की है। परंतु मेरा अपना विचार है कि रूस अंतिम दिनों में आएगा। अंतिम दिन परिभाषित शब्द है जो विशेष करके महाक्लेश का संदर्भ देते हैं। मेरे मित्रों, यह ख्रिस्त विरोधी के उदय का समय होगा। वह शांति का मंच बनाएगा। परिणाम स्वरूप महाक्लेश के प्रथम भाग में झूठी शांति होगी। 7 वर्ष के इस समय काल में रूस उत्तर दिशा से आएगा और इसराइल पर आक्रमण करके ख्रिस्त विरोधी की झूठी शांति को भंग करेगा। यहेजकेल की पुस्तक 38 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, अर्थात तू इसराइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सब के सब निडर रहेंगे। ध्यान दीजिए, स्वदेश लौटने के बाद इसराइली प्रजा ख्रिस्त विरोधी की प्रभुता के अधीन रहेगी। वह उन्हें आश्वस्त कर देगा कि पृथ्वी पर शांति आ गई है और पृथ्वी की सब समस्याओं का अंत हो गया है, प्रभु राज का आरंभ हो गया है। परंतु यह सच नहीं है। वे शीघ्र ही देखेंगे कि सताव के मध्य में उत्तर से रूस आक्रमण करेगा जो उनका शत्रु है। यहेजकेल 38 अध्याय के 16 पद में लिखा हुआ है, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है वैसे ही तू मेरी प्रजा इसराइल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा इसलिए हे गोग, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझ से अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों के देखते तेरे द्वारा अपने को पवित्र ठहराऊं, तब वे मुझे पहचान लेंगे। मेरे प्रियो, इसराइल शांति में वास करेगा क्योंकि ख्रिस्त विरोधी सबको भ्रम में डाल देगा। उस समय इसराइल की सहायता का स्रोत परमेश्वर ही होगा। वह स्वयं ही रूस का सामना करेगा, युद्ध का आरंभ होगा और महाक्लेश का आगमन होगा। 3.5 वर्ष तक यह प्रकोप की चरम सीमा होगी। संपूर्ण पृथ्वी आग में जलेगी। पृथ्वी पर एक के बाद एक दंड आएगा। इस समय के विषय में प्रभु यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 22 पद में कहा था, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता। मेरे मित्रों, इस अध्याय का शेष भाग पढ़कर देखें कि परमेश्वर रूस को कैसा दंड देगा। मित्रों, यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 38 समाप्त होता है और यहाँ पर हम देखते हैं अध्याय 29 में गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी है और इस दुर्जय शत्रु के विनाश की अतिरिक्त जानकारियां भी दी गई हैं। मेरे प्रियो, आइए अब हमारे साथ में यहेजकेल की पुस्तक 39 अध्याय उसके 1 पद को पढ़िए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर हम फिर से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध हूं। मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर के खिलाफ चलता है, उसके विरोध में कार्य करता है, तो निश्चय ही परमेश्वर उसके विरोध में है। आज हम जिस संसार में रहते हैं, लोग बुराइयां करते हैं लेकिन वे ही फलवंत होते हैं। और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं परंतु हम फल नहीं प्राप्त करते, परंतु जो लोग बुराई करते हैं वे ही फलते और फूलते हैं। परंतु आप धीरज रखें, परमेश्वर न्यायी है, वह सब कुछ जानता है और अपने समय के अंतराल में वह उसका न्याय करेगा। जिस प्रकार से वह यहाँ पर रूस के बारे कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ, और वह निश्चय ही पाप का दंड उन्हें देगा। मेरे प्रिय मित्रों, आज आप अपने जीवन के बारे में क्या जानते हैं? आप अपने आप को कितना जानते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं? क्या आप सत्यता पर चलने वाले हैं? यदि आज सत्यता की बात की जाए तो लोग यही समझते हैं कि मैं मूर्ख हूं, परंतु इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर सत्य से प्रेम करता है और वह चाहता है कि आप पवित्र बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। वह नहीं चाहता कि आप नाश किए जाएं। यहाँ हम इस अध्ययन के द्वारा से देख रहे हैं कि इसराइली बंधुआई में चले गए और परमेश्वर उन्हें वहां से निकाल करके लाना चाहता है, उन्हें स्थापित करना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि यहोवा ही उनका परमेश्वर है। अर्थात आज आपके लिए और मेरे लिए भी यही है कि प्रभु यीशु मेरा और आपका उद्धार करता है, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। क्रूस की मृत्यु उसने सही, जबकि वह निष्कलंक था, उसमें कोई पाप नहीं था, फिर भी हमारे पापों को उसने अपने ऊपर में ले लिया, हमारी सजा को उसने सह लिया और हमारे कारण वह मारा गया ताकि मैं और आप जीवन पाए। जो कोई उसके पास आएगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, यह क्या ही अद्भुत बात है कि हम प्रभु यीशु के पास आकर हमेशा की जिंदगी, अनंत जीवन, मुक्ति और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आप इस संसार में उस उद्धार को प्राप्त करें? यदि हाँ, तो आज आपके पास समय है कि आप एक निर्णय लें और प्रभु से कहें कि प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, आप मेरी सहायता कीजिए। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आप एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए लेंगे। प्रभु आपकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
आज गुना के सबब से दिल मेरा नाशाद है, आज गुना के सबब से दिल मेरा नाशाद है। माफ कर मेरे गुना, तुझसे मेरी फरियाद है। आज गुना के सबब से दिल मेरा नाशाद है। दोस्तों का साथ है गुनाह की जिंदगी, दोस्तों का साथ है गुनाह की जिंदगी। कैसे पास आऊं तेरे, रूह मेरी बर्बाद है। कैसे पास आऊं तेरे, अब रूह मेरी बर्बाद है। माफ कर मेरे गुनाह, तुझसे मेरी फरियाद। सबब से दिल मेरा नाशाद है। चुका हूँ हीनता।